السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. الحمد لله آج ہم 22ویں رات میں داخل ہو چکے ہیں. اس میں ہمارا جاگنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اس دعا کو نہیں بھولیے گا. ہر رات میں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹپ دیا کروں گی، اور دوسرے ہم اسماء حسنہ کو کنٹینیو کریں گے. آج جس نام کو ہم دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت نام ہے، مگر اس سے پہلے یہ جان لیں کہ ہم اسماء حسنہ کیوں سیکھ رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے. تو سمپل سی بات ہے، کم از کم ہم جان کے تو دیکھیں کہ وہ کون ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کا ہم نام لیتے ہیں، جس کے نام کے ہم روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے ہم جاگے ہوئے ہیں، وہ کون ہے. اور اس کو جاننے کا بہترین طریقہ اس کے نام ہے اور قرآن ہے. اسماء حسنہ اس کے صفاتی نام ہے. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نام رکھ لیتے ہیں، مثلا کسی نے اپنا نام ساجدہ رکھ لیا مگر سجدہ کبھی ایک بھی نہیں کیا ہو، اپنا نام مومنہ رکھ لیا اور ایمان نام کی چیز نہ اس میں کوئی ہو، تو ہم تو ایسے ہی رکھ لیتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے نام ایسے ہی نہیں ہیں، اس کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب اس کی صفات ہیں، مکمل طور پر اس میں موجود ہیں، پرفیکشن کی حد تک موجود ہیں، بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے ان میں. اور جب ہم ان ناموں کو سیکھتے ہیں تو یاد رکھیں آپ بہت بڑے ثواب، بہت بڑے اجر والا کام کر رہے ہیں. یہ کوئی عام سبجیکٹ نہیں ہے، یہ کوئی دوسرے چیزیں جیسے ہم سیکھتے ہیں، بعض اور سبجیکٹس ہیں ٹھیک ہے، ان کے کوئی انڈائریکٹ فائدے ہوں گے قرآن سیکھنے کے لیے بھی یا کچھ اور، لیکن اسماء حسنہ کا سیکھنا اصل میں ہمیں ہمارے رب کی پہچان دیتا ہے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے پھر، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے ایسے فزیکلی، مگر یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں سوچیں تو ذہن میں اس کی یہ صفات آ جائیں. آج لوگوں نے اللہ کے ناموں کا بھی بس ایک وظیفہ بنا لیا کہ فلاں مشکل ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ نام پڑھ لیں، اتنی دفعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے اس کو پکاریں، بہت اچھی بات ہے، مگر صرف یہاں تک اکتفا نہ کریں، اس کی ذات کو پہچانیں ان سے. ہر چیز صرف اپنے مطلب کے لیے کہ بھئی یہ حاجت پوری ہو جائے، اور بے سوچے سمجھے پکارتے جا رہے ہیں وہ نام، اتنی دفعہ فلاں نے بتایا پڑھ لو. جب آپ ان ناموں کو سمجھیں گے نا، اگرچہ میں اور آپ مکمل طور پر ان ناموں کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جیسا اللہ تعالیٰ خود ہے ویسے ہی اس کی صفات بھی ہیں، وہ ہماری اتنی چھوٹی عقل میں نہ آ نہیں سکتی یہ سب صفات. مگر جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ جب آپ سمجھیں گے تو اتنا خوبصورت ایک احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا، خود بخود اللہ تعالیٰ سے محبت دل میں موجے مارنے لگے گی، پیار آئے گا اس ذات پہ. پھر جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کے لیے بندہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کی اطاعت مشکل نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اگر آج ہمیں ماننا مشکل لگ رہا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکم بڑا سخت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ محبت میں کمی ہے. ابھی تک ابھی محبت اس پائے کی نہیں ہے جس جیسی ہونی چاہیے. نہیں ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو واقعی پھر انسان کچھ سوچتا نہیں ہے، پھر آگ میں بھی کود جاتا ہے. تو یہ سمجھ کے ان شاء اللہ تعالیٰ ان ناموں کو دیکھیں گے. اور میرا تو فیوریٹ سبجیکٹ ہے، مطلب مجھے محبت ہے اس سبجیکٹ سے، اسماء حسنہ. और एक एक नाम के लिए वक्त बहुत ही कम होता है, बहुत बात इन पे हो सकती है, लेकिन चलें जितना भी हम समझ सके मुख्तसर वक्त में, आज का जो नाम है वो नाम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और इसके मुझे यकीन है कि सब ने वजीफे भी किए होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ज़ात से शुरू करूँगी, मुझे और आपको, हम सबको इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, और वो है अल्लाह ताला का नाम अल-वकील, जिसको हम कहते हैं कारसाज। कारसाज रटा हुआ है, बहुत ज़्यादा रटा हुआ है, हमने सब इसका तर्जुमा जानते हैं, लेकिन क्या मतलब है अल-वकील का? अल-वकील जल्ल जलालहू, वो ज़ात के सब काम जिसके सुपुर्द कर दिए गए हों, तमाम मखलूकात उसी की हैं और उसी का हुक्म उन पे चलता है, तो उस ज़ात के अलावा कोई भी किसी चीज़ का मालिक नहीं है, तो उसी के सुपुर्द फिर सारे काम किए जाएं, ये होता है अल-वकील। चाहे वो कारोबार के हों, चाहे वो ज़िंदगी के दूसरे मामलात के हों, सब मामलात उसके सुपुर्द किए जाएं। दूसरा माना ये है कि वो जो कामों में इसलाह करता हो, दुरुस्त करता हो उनको। नंबर 3 ये है वो ज़ात जो बंदों के कामों की रखवाली करे, उनके कामों का जिम्मेदार हो, जिसको कहते हैं केयर टेकर, ठीक है, जिस पे कोई भरोसा कर सके, जिसके ऊपर कोई मामले को सुपुर्द कर दे, छोड़ छोड़ के आराम से बैठ सके। ये नाम कुरान करीम में 14 टाइम्स आया, 14 दफा, कि जो बंदों के अमूर को, उनके मामलात को, उनकी परेशानियों को, उनके मसलों को एहसान के साथ टेक केयर कर ले। आज मैं आपसे एक सवाल करूंगी, क्या आपको अल्लाह पर भरोसा है? हम कहते हैं ना अल-वकील नाम है कि यानी जिस पे भरोसा किया जाए, तो क्या आपको अल्लाह पे भरोसा है? हम सब कहेंगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर वाकई भरोसा है तो हम तो ये कह रहे हैं ना कि वो अल्लाह वो है जो बंदों के कामों की इसलाह कर लेता है, उनको दुरुस्त करता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई मामला मेरी मर्जी के खिलाफ हो जाता है, मैं कुछ चाहती हूँ वो कुछ और जाता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन वो कुछ और ही बन जाता है, तो उस वक्त मुझे भरोसा होता है अल्लाह की चॉइस पर कि अल्लाह ने किया है ना तो ठीक होगा। ये वो नाम है अल्लाह ताला का कि जब इसका यकीन हमारे अंदर बैठ जाएगा ना कि वो सारे काम संभालने वाला है, वो सारे कामों को ही टेक केयर कर लेगा, जो हमारे दिल बार बार इंसानों की तरफ रुख करते हैं, उनका ख्याल आता है, वो करेगा वो करेगा वो करेगा, उस सब से बेनियाज होके बस ये दिल में यकीन बैठ जाए कि सारे काम अल्लाह ने ही करने हैं, मुड़ मुड़ के मैं लोगों की तरफ ना देखूं, वो लोग बेचारे खुद इतने कमजोर होते हैं, वो तो अपने काम नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं, जो वो उसको कह दिया ना वो कर देगा बस। अच्छा, इसको थोड़ा सा देखने का एक तरीका ये है, कभी आपने देखा आप किसी बहुत बड़ी यानी किसी पोजीशन वाले को आप कहते हैं, कोई बड़ी सीट पे होता है, आप उसको कहते हैं भैया हमें नौकरी चाहिए, तो फिर उसके बाद आप कहते हैं नहीं आप तो नौकरी ज़रूर मिल जाएगी क्योंकि तुम्हें पता है उसने प्रॉमिस कर लिया, वो जो इतनी बड़ी ओहदे पे है, और फिर अगले दिन पता चलता है वो फायर हो गया, उसके बाद आप क्या कहते हैं, हाय अब ये काम कैसे होगा, अब वो तो नौकरी पे ही नहीं रहा तो अब कैसे होगा, इसका मतलब किस पे भरोसा था? कभी हम पत्थरों पे भरोसा करते हैं, पत्थर पहन लेते हैं उंगलियों में और मेरा ये काम बन जाएगा क्योंकि मैंने ये पत्थर पहन लिया। आज हमारा भरोसा असबाब पर है, अभी हम ये बात करेंगे कि असबाब पे इसबाब को यूज कर सकते हैं नहीं, लेकिन हमारा भरोसा हमारा ट्रस्ट किस पे है? असबाब पे। सबब है तो फिर उसके बाद में फिर अल्लाह के सुपुर्द भी कुछ छोड़ने को तैयार, लेकिन जब सबब नहीं नजर आता तब अल्लाह पे भरोसा भी नहीं रहता, कहते हैं होगा कैसे, क्योंकि हम सोर्स को देखते हैं कि सोर्स तो कोई लगा ही नहीं मैंने, कोई कोर्सेस मेरे पास है ही नहीं है, तो अब ये काम बनेगा कैसे। तो हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला तो सोर्सेस का भी पैदा करने वाला है, उसको कोई असबाब की ज़रूरत है। और हम ये सोचते हैं कि ये इसका कोई, चूंकि हमें कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा, तो नाउज़ुबिल्ला हमारे जहन में क्या आता है कि अल्लाह भी कैसे करेगा। यानी जहन में ये बात होती है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, तो अब सोचते क्या हैं कि अब अल्लाह भी कैसे इसको ठीक कर सकता है। तो अल्लाह ताला को कोई डॉक्टरों की और दवाओं की और उसकी कोई इन असबाब की थोड़ी ज़रूरत है। तो हमारी नज़र ना असबाब पे होती है, रिसोर्सेज पे होती है, सबब के ऊपर होती है। सबब बन जाए और हमें लगे ये पॉसिबल है, तो फिर हम कहते हैं हमें अल्लाह पे भरोसा है। और अगर सबब नहीं नज़र आ रहा तो हमें अल्लाह पे भरोसा भी नहीं होता। अल्लाहु अकबर। हालांकि कुरान में जब ये नाम आता है, अमेजिंग अमेजिंग बात है, तो आप नोट करेंगे कि उसके साथ ही अटैच्ड होती है अल्लाह ताला की बेपनाह कुदरत की बात, उसके इल्म की बात। मसलन है सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। रब जो मशरिक का मगरिब का उसके सिवा कोई इलाह है ही नहीं, उसको अपना वकील बना लो, वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, कभी कोई वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कोई शर तुम तक नहीं आएगा, तुम उसको वकील बना लो ना। तुम कैसे नहीं अल्लाह पे ट्रस्ट करते, वो तो रब है मशरिक और मगरिब का, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या मशरिक मगरिब से भी बाहर का है और वो इलाह है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं उसको वकील बनाओ, उसके ऊपर भरोसा करके तो देखो। हमारा भरोसा देखें पता है कैसा होता है, हम कहते हैं फलां को घर पे छोड़ आई हूँ ना, अब नहीं मुझे कोई फिक्र, वो है ना घर पे, तो वो सब चीज़ों की सिक्योरिटी, अब कोई मसला नहीं, अब कोई चोरी नहीं हो सकती, फलां फलां सिक्योरिटी वाले को या चौकीदार या उसको छोड़ आई। अब क्या भरोसा एक इंसान पे है कि भरोसा किया भी तो हमने अपने जैसों पे किया, ज़रूर उसको छोड़े सिक्योरिटी को, लेकिन भरोसा ये हो कि हिफाजत तो अल्लाह ने ही करनी है, फिर भी ज़रूर जाएं डॉक्टर के, लेकिन जहन में ये हो डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर को तो मैंने ले लिया है, दवा भी लूंगी, लेकिन डॉक्टर नहीं मुझे शिफा दे सकता, शिफा देनी है तो अल्लाह ने। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला, सूरह बनी इसराइल में, तुम मेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज ना बनाओ, किसी को अपना वकील ना बनाओ, अल्लाह ही को वकील बनाओ, इसलिए कि कोई बन ही नहीं सकता कारसाज। फिर फरमाया सूरह अज़ाब में वतवक्कल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करके तो देखो, करो अल्लाह पे भरोसा। वकफा बिल्लाहि वकीला, जिसने अल्लाह पे भरोसा कर लिया ना वो काफी है काम बनाने वाला, वो काफी है वकील, वो तुम्हारे सारे कामों को सही कर सकता है, उसकी जात है भरोसे के लायक। अगर करना है भरोसा तो उसके ऊपर करो, किसी और पे नहीं। सुभान अल्लाह, हमने कितनी दफा ये जो वजीफे किए होंगे, हसबी अल्लाह व नेमल वकील के, हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु के, ये सब हमने वजीफे किए हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भरोसा करना क्या चीज होती है। देखिए नमाज पढ़ना रोजे रखना ये आसान है, लेकिन अल्लाह के ऊपर अपना ट्रस्ट डाल देना ना कि वो टेक केयर कर लेगा ना मेरे मैटर्स की, मुझे इस चीज का गम है, मुझे इस चीज की परेशानी है, कैसे होगा, इसलिए कि मेरा भरोसा अल्लाह पे नहीं होता। किसी भी चीज पे अगर मेरा बस नहीं चलता तो बस कहें अल्लाह काफी है, हसबी अल्लाह, अल्लाह काफी है, वो बेहतरीन वकील है ना जिसके ऊपर चीजें छोड़ दी जा सकती हैं, मैं किस काबिल हूं, मैं उसके सपोर्ट करती हूँ हर चीज को, चाहे कोई फिजिकल है, चाहे स्पिरिचुअल है, चाहे ईमान है। हमें ये फिक्र होती है हमारे बच्चों के ईमान का क्या होगा, क्या बनेगा, अल्लाह मैंने तुझ पे भरोसा किया। हम तो अपने ही ईमानों की नहीं गारंटी दे सकते, हमें बच्चों की क्या फिक्र है, हमें तो अपना ही नहीं पता हमारा क्या बनना है। तो जो चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं, हम उनको फिर अल्लाह के सपुर्द करें कि अल्लाह तू संभाल लेना, तू संभाल ले, मैं नहीं संभाल सकती, ये सारे गमों का इलाज है। हम किसी इंसान के सुपुर्द भी, किसी स्ट्रांग बंदे के सुपुर्द कोई काम लगाते हैं ना, तो मुतमईन हो जाते हैं कि उसको कह दिया ना मैंने, अब फिक्र ना करो तुम। मैं फलाने को, मैं बड़ी अप्रोच है उसकी, वो तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह अकबर, हमारी कितनी बड़ी नादानी है इंसानों के ऊपर चीज डाल के, और फिर मुतमईन हो जाते हैं लेकिन अल्लाह के ऊपर भरोसा ही नहीं करते। इतना सा भी हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है जितना हमें इंसानों पे है कि अल्लाह हमारे दीन के भी, दुनिया के भी, औलाद के भी, हर चीज की जिम्मेदारी लेता है और हम उसके ऊपर छोड़ें, उसके ऊपर छोड़ के देखें तो सही, उसके ऊपर ट्रस्ट करके देखें तो सही। आपको एक ट्रस्ट की कहानी सुनाऊं, उससे शायद आपको ज्यादा समझ आएगी। वैसे तो बहुत सारी हैं सीरत में, आप जाके जरा हमराउल असद की में का जो वाक्य है वो जरा पढ़ लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि सहाबा ने कैसे ट्रस्ट किया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी बहुत सारी बातें हैं, इब्राहीम अलैहि सलाम की ज़िंदगी में ट्रस्ट की, अल्लाह को वकील बनाने की बहुत सारी बातें। लेकिन चलो, मैं ये कहती हूँ कि हम नबियों की बात इसलिए नहीं कहते कि आप फिर कहते हैं कि वो तो अम्बिया थे तो वो तो ऐसे थे। आज मैं एक आम औरत की बात आपको बताना चाहती हूँ कि वो औरत भी थी, और औरतें कमज़ोर होती हैं, वो फौरन किसी और को सहारा देखती हैं, अच्छा इसके ऊपर भरोसा कर लो, इसके ऊपर कर लो। तो एक औरत जो नबिया नहीं है, अब क्या है वो औरत? ऐसी है कि उसका खामिद उसको छोड़कर जा रहा है एक बियाबान जगह पर, और वो हैरान और परेशान है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, पता कुछ नहीं है। ऐसी जगह है ना जहां ना पानी है, ना खाना है, ना कोई घर है, कोई झोंपड़ी भी नहीं है। और जब खामिद छोड़कर वापस पलट रहा है तो पूछ रही है, हमें यहां किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं, ये किधर हमें छोड़ के जा रहे हैं? अब जो खामिद है उनको भी, उनका भी भरोसे का लेवल देखें आप क्या होगा, कि उनको ना, इनको ना, मियां को ना बीवी को, किसी को ये नहीं पता कि अल्लाह ताला की इसमें हिकमत क्या है। उनको ये बस पता है खामिद को कि अल्लाह ताला का हुक्म है ये, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक उम्मत आएगी जो बीबी हाजर के कदमों के ऊपर दीवाना वार दौड़ेगी। वो कहाँ जानते थे कि इस्माइल के कदमों से जमजम फूटेगा जो रहती दुनिया तक लोगों के लिए मुतबर्रिक होगा? वो कहाँ जानते थे कि मेरा ये छोटा सा कुंबा बुनियाद बनेगा इस शहर की आबादी का, जो दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर होगा? उनको ये सारी चीजें नहीं पता थी, उनको बस ये पता था अल्लाह का हुक्म है। उनको नहीं हिकमतें पता, उनको नहीं पता कि क्या, उनको बस ये पता यहाँ पे छोड़ना है, बस छोड़ दिया। अब इमेजिन करें कितना मुश्किल काम होगा, कितने ख्यालात आ सकते हैं कि इनको यहाँ पे कोई दरिंदा फाड़ खाएगा, इनको यहाँ पे कोई लुटेरे ना लूट लें, कोई गुलाम लौंडी बना के ना ले जाए इनको, कोई यहाँ पे इनको मार ना दे, और फिर इनको कोई चीज की यहाँ पे जरूरत पड़ गई किसको कहेंगे, ये कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कहाँ रहेंगे, हजार बातें ना जहन में आ सकती। लेकिन उनको क्यों नहीं कोई फियर था, कोई खौफ क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को वकील बनाया था। अब जब बीबी हाजरा बोल रही हैं कि क्या अल्लाह का हुक्म है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब ही नहीं दे रहे तो आगे से पूछ रही है ना कि कोई ना कोई बात तो होगी, ऐसे तो नहीं छोड़ के जा सकते, तो बस हाँ में सर हिलाया। तो क्या फरमाती है, फिर अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा, और हसबी अल्लाह व नेमल वकील पढ़ती। लेकिन उनका हसबी अल्लाह व नेमल वकील पढ़ना हमारी तरह नहीं था ना, हमारी तरह नहीं था जो वजीफे के तौर पे था, उनको वाकई अल्लाह पे भरोसा था। क्योंकि जब तक उन्होंने ये सोचा कि पता नहीं इब्राहिम का फैसला है तो बेचैन है, जब ये पता चला अल्लाह का फैसला तो फिर काम हो गई है, फिर कुछ और सवाल नहीं किया, फिर पीछे नहीं रोती भी भागी। सोचूं अगर मैं जन्नत तक पहुंच गई तो बीबी हाजरा से मिलने की मुझे बहुत ख्वाहिश होगी, कि वो औरत जिसका अल्लाह पे इतना भरोसा, इतना कनेक्शन अल्लाह के साथ, हम तो अपने घर में भी अकेले बैठे हो ना तो डर जाते हैं, हाँ अकेले हैं हम, और बीबी हाजरा देखे, ये है तबक्कल, ये है भरोसा अल्लाह तआला पर। मगर ये याद रखिए, कि तवक्कल इस चीज का नाम नहीं है कि इंसान नाकारा होके बैठ जाए। ये मत समझेंगे कल को इम्तिहान है तो हम कुछ नहीं पढ़ते, क्यों, मेरा बस अल्लाह पे भरोसा है ना, अब से मैंने अल्लाह को अपना वकील बना लिया। नहीं, तवक्कल ये है कि इंसान असबाब इख्तियार करे, जैसे मैंने आपको कहा डॉक्टर के भी जाएंगे आप, भाग दौड़ भी करेंगे आप, खून पसीना भी बहाएंगे आप, मेहनत भी करेंगे आप, अपनी 100% 100% नॉट 90 नॉट 70 100% अपनी एफर्ट लगा के जितनी ह्यूमनली पॉसिबल है हाथ पैर मारेंगे। जैसे बीबी हाजरा भागी थी, ये नहीं उन्होंने किया था बस मैंने अब हस्बी अल्लाह पढ़ लिया अब बैठी में खुद ही अल्लाह कहीं से पानी निकालेगा, दौड़ी थी वो, अपनी कोशिश करके फिर अल्लाह पे भरोसा करें कि रिजल्ट अल्लाह निकालेगा, और चाहे किसी तरफ के भी हो मुझे कबूल है अल्लाह का फैसला, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो निगेबान है, वो मेरा वकील है ना, तो वो अच्छा ही फैसला करेगा, जो भी होगा उसमें अच्छाई ही होगी, क्योंकि अल्लाह ताला पे जो भरोसा करता है ना अल्लाह ताला उसके मामलात का चार्ज ले लेता है, और ये नहीं कि किसी और को दे देता है फरिश्तों ये तुम आप संभालो ये काम। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि जो वकील होते हैं, जो बड़े बड़े वकील होते हैं, अगर उनके पास 100 केस आ जाए ना, वो जाने किसी को नहीं वापस देते, तो वो जो बड़ा वाला वकील होता है वो उस केस को लेता है जिसके पैसे ज्यादा होते हैं, जो बड़ा केस होता है, और बाकी जो छोटे छोटे केस होते हैं वो अपने छोटे वकीलों को रख लेते हैं, उनको दे देते हैं। अल्लाह ताला ये नहीं करता कि आगे डेलीगेट कर दे फरिश्तों, तुम ये तो इनके छोटे छोटे मामले आते हैं ये तुम टेक केयर करो, मैं सिर्फ बड़े देखूंगा। नहीं, अल्लाह ताला खुद हर एक का केस ले लेता है, हर एक के काम की खुद निगेबानी करता है। मगर हाँ, जैसे मैंने कहा कि कंडीशन एक ही है, ये खुद इंसान पहले कोशिश करे। अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ तवक्कल अलल हय अल्लज़ी ला यमूत, उस पे भरोसा करो ना जो जिंदा है जिसको मौत नहीं है। हम भरोसे करते हैं आए आज फलां है मेरे पास तो फिर मेरे काम चल रहे हैं, हाय कल को ये नहीं होगा तो क्या बनेगा मेरा, बच्चे नहीं होंगे तो फिर हमारे बुढ़ापे का क्या बनेगा, नौकरी नहीं होगी तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो अल वकील ये नाम अगर इसको समझ लिया जाए ना तो हमारी जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाए। मेरे मैं नहीं रहूंगी तो बच्चों का क्या होगा, तो बच्चों का वही होगा जो पहले हो रहा था, जिस वक्त वो पेट में थे उस वक्त जो था, जो उनको उस वक्त देख रहा था वही बाद में देखेगा। शादी करना चाहते हैं कहाँ करें, कौन पता नहीं कैसा निकलेगा, तो उसको अब इस चीज को अगर सोचेंगे तो इंसान परेशानी के अंदर रहेगा, तकलीफ के अंदर रहेगा। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे सपुर्द कर दो ना ये सारे मामला, अल्लाह गैब समावाति वाला, सारे गैबों का आसमान और जमीन में जितने हैं सब का जानने वाला, सब उसी के हवाले हैं, सब उसी के लिए हैं। वइलैही युरजाल उमूर वइलैही युरजाल अम्र, जो काम है वो उसकी तरफ लौटाए जाते हैं, कुल्लू सारे के सारे। अब तुम क्या करो, उसकी इबादत करो और उसी के ऊपर तवक्कल करो। अल्लाह अकबर, तो ये करने की जरूरत है आज हमें, अगर हमने इस नाम को जिंदगी में शामिल कर लिया। और खास तौर पे दो मौके ऐसे हैं जिनके बारे में दुआ भी है कि इन मौके पे जरूर अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करो। एक मामला जिस वक्त के इंसान घर से निकलने लगता है तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुआ सिखाई है, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैंने अल्लाह पे तवक्कल किया, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो फरिश्ता फिर कहता है तुम हिफाजत में आ गए, तुम हिदायत पा गए और अल्लाह काफी हो गया तुम्हारे तमाम उमूर के लिए। और फिर अगर कोई हर रोज सुबह और शाम ये कहता है ना 7 times हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये 7 times सुबह कहता है 7 times शाम को कहता है, तो उसके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह ताला काफी हो जाएगा اس کی ہر پریشانی ہر فکر کے لیے اللہ کافی ہو جائے. کہ نا یہ کلمات لیکن آج تک پڑھے تو ہوں گے مگر کیا اس طرح سے پڑھے ہیں کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سامنے ڈال دیے ہیں, اب اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو دیکھے گا. میں اپنا کام کرتی جاؤں, میں صرف یہی کر سکتی ہوں, اتنا ہی کر سکتی ہوں, فزیکلی میں یہ کوشش کر لوں, یہ کوشش کر لوں, دیٹس اٹ, اس سے زیادہ نہیں میں کر سکتی. اور میں نے اپنا پارٹ کر لیا, اب آگے اللہ کے اوپر. تو بعض دفعہ انسان منہ سے تو کہتا ہے میرا اللہ پہ بھروسہ ہے, لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھتا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. اور یہ بھروسہ اینڈ تک ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھروسہ کیا, جو ہی دیکھا اسباب ختم ہوا پھر غمگین ہو گئے, ہائے ہائے اب تو نہیں کچھ ہو سکتا. اس کا مطلب اللہ پہ کبھی بھروسہ تھا ہی نہیں, وہ تو اللہ کلی شاہین قدیر ہے. اور یہ دیکھیں یہ کوئی نا ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی سوئچ ہے کہ آن آف ہو جائے, ہمیں بس آج بھروسہ کرنا شروع ہو گیا کل ایسے. یہ سیکھنے سے آتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ریمائنڈرز ہیں یہ نام, حالانکہ دیکھیں ہم سب کو یہ نام پتہ ہے, لیکن جب ریمائنڈ ہو جائے گا نا تو پھر اب ہم تھوڑا کچھ عرصہ ذہن میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ٹرین کیا تھا نا توکل کرنے پہ, جب انہوں نے ان کو حکم دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے عصا پھینکے اور وہ سانپ بن گیا, فرمایا کہ اٹھا لو موسیٰ علیہ السلام تو پلٹ کے بھاگ گئے. اب اللہ تعالیٰ نے بلایا ان کو, پکڑو اب اس کو. اس میں کتنا بڑا اللہ پہ بھروسہ تھا, وہ سانپ کو پکڑنا نہیں, جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوگا تو وہی پکڑ سکتا ہے نا. کیسے پکڑ سکتے ہیں جس کو دیکھ کے ڈر کے ابھی بھاگ رہے, اس کو ہاتھ میں کیسے لیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ سکھایا. پھر اس کے بعد پھر جب دیکھا جادوگر, اس وقت رسیاں پھینکی اور سانپ بن گئے, تو اس وقت قرآن میں آتا ہے کہ دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں آپ نہیں گھبرائیں, آپ اپنا عصا پھینکے. ٹھیک ہے, اب یہ پریکٹس ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی, ٹریننگ ہو رہی ہے. تو تب پھر دیکھیں سبحان اللہ, جب پانی کے آگے کھڑے ہوئے ہیں سمندر کے آگے, اور قوم کہہ رہی یہ کیا کیا موسیٰ, ہم تو تمہارے بھروسے پہ آ گئے, تم نے یہ کیا کیا کیا. اس وقت پھر گھبرائے نہیں, پھر کیا فرمایا, ٹرین ہو گئے, انما یا ربی سیہدینی, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ اکبر, تو پھر اللہ کافی ہو جاتا. امام رازی سورہ یوسف کی تفسیر میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری عمر میں یہ تجربہ کیا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں جب غیر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سختی کا باعث بنتا ہے, محنت مشقت کا باعث بنتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اور مخلوق کی طرف نگاہ نہیں کرتا تو وہ کام ضرور با ضرور نہایت اچھا اور خوبی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں راسخ ہو گئی ہے, میری پوری زندگی میں یہ ایک تجربہ ہے میری زندگی کا, کہ انسان کے لیے سوائے اس کے کوئی چوائس نہیں ہے کہ اپنے ہر کام میں مکمل اسباب اختیار کر کے پھر اللہ کے فضل پہ نگاہ رکھے, کسی اور چیز پہ بھروسہ اعتماد نہ کرے. وہ ہے اس کو کہہ دیا یہ کر دی وہ کر دی, نہیں کرے کام لیکن بھروسہ نہ کرے. اس کے بعد یہی کہے اللہ کرنا تو نہیں ہے. حضرت شقیق بلخی ہیں رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنے شیخ سے جو آٹھ باتیں سیکھی تھی ان میں ایک بات بڑی اہم تھی, اور وہ اہم بات یہ کہ الوکیل پہ جو بھی بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اس کا دل فکروں سے غموں سے پریشانیوں سے نجات پا جاتا ہے, اور آنے والے جو فیوچر میں جو بھی چیزیں آنے والی ہوتی ہیں, کئی چیزوں کے خوف ہوتے ہیں نا انسان کو, وہ پریشان نہیں ہوتا پھر. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی ایسی چیز پہ ہے جو خود مخلوق ہے. مثلا کوئی اپنی جائیداد پہ بھروسہ کرتا ہے, کوئی اپنی جاب پہ کرتا ہے, کوئی اپنی بینک بیلنس پہ کرتا ہے, میرے پاس اتنے پیسے ہیں نا اب مجھے بس فکر نہیں ہے کوئی. کوئی اپنی بزنس پہ کرتا ہے, کوئی اپنے کسی ہنر پہ کرتا ہے, کوئی اپنی صحت پہ کرتا ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے نا میں جب چاہے جو مرضی کام کر لوں گا. تو ساری مخلوق ایسی چیزوں پہ اعتماد کیے ہوئے جو ان کی طرح کی مخلوق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, پھر اس کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اللہ کافی ہے اس کے لیے. जिस पे उसने भरोसा, उसने पता है कितनी बड़ी जात पे भरोसा कर लिया। तो जब इंसान भरोसा कर ले ना अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दे, तो अब उसका ध्यान अब असबाब की तरफ नहीं लगा रहना चाहिए कि हर वक्त बस तवज्जो उधर ही रहे। अब आप अपना मामला किसी वकील के सुपुर्द कर देते हैं जब दुनिया में भी, तो क्या उसके बाद फिर फिक्रमंद तो नहीं रहते ना? फिर कहते हैं जी हमने पूरे शहर का सबसे महंगा वकील कर लिया, अब तो फिक्र की कोई बात ही नहीं है। अब वकील करने की हद तक तो आपने कोशिश की, आगे आप कह देते हैं कि अब आपको भरोसा उसके ऊपर है। लेकिन इतनी बातों हमें यहाँ पे समझ आ जाती, फिर अल्लाह ताला के मामले में क्यों नहीं समझ आती? अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम सबको इसका यकीन दिला दे। तो एक दुआ है जो बहुत ही प्यारी दुआ है, हदीस में आती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो सोने से पहले की दुआ है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, ये सोते वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे। और उसमें भी देखिए कैसे अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ती हूँ और आपको साथ इसका तर्जुमा भी बताती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे जब सोने लगते थे, अल्लाहुम्मा अस्लम तू वजही इलैक, ए अल्लाह मैंने अपनी हस्ती को तेरे सपुर्द कर दिया, व फवद तू अमरी इलैक, अल्लाह मैंने अपना मामला जो है ना वो तुझे सौंप दिया। वल जा तू जहरी इलेक, अपने तुझे अपना पुष्ट पना बना लिया, क्या अपना मामला भी पहले अपनी हस्ती को तेरे सुपुर्द कर दिया, तेरी तरफ रुख कर लिया, अपने अम्र जो है अपने उमूर जितने मेरे काम है तेरे हवाले कर दिए, तुझको अपना पुष्ट पना बना लिया। रगबतन व रहबतन इलेक, तेरे जलाल से डरते हुए और तेरे रहम व करम की तलब और उम्मीद करते हुए, ला मलजा वला मनजा मिन का, अल्लाह तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं है, कोई निजात की जगह नहीं, कोई बचाव की जगह नहीं है, इल्ला सिवाय एक जगह इलैक, तेरे ही पास है। सुबहान अल्लाह, मौला तेरे ही पास आना है, अगर मुझे पनाह भी चाहिए तेरे से भाग के मैं किधर जाऊँ, तेरे से भाग के तो कोई जाए पनाह नहीं, कोई बचाव की जगह नहीं। जैसे एक बच्चा, मिसाल नहीं बनती लेकिन जस्ट समझाने के लिए, एक बच्चा है उसको माँ मारे भी की ना, और उसको कोई माँ से शिकवा भी हो या कोई उसको तकलीफ भी हो, तो माँ मार भी रही है वो उसी के साथ चिमटता जाता है, उसको पता है कोई और जगह ही नहीं, अल्लाह ताला के सिवा तो कोई जाए पनाह है ही नहीं, कोई बचाव की जगह ही नहीं, अल्लाह कोई ला मल जा वाला मन जा मिन का इल्ला इलैक। और फिर अल्लाहुम्मा आमन तू बी किताबिक अल्लज़ी अनज़लता, अल्लाह मैं ईमान लाया तेरी किताब पे जो तूने नाजिल की, वह नबी एक अल्लज़ी अरसलता, और जो तेरा नबी है जिसको तूने पैगंबर बना के भेजा। ये बुखारी में भी यही है, अगर आपके पास बुखारी तो उसमें से आप देख सकते हैं। मगर खूबसूरत बहुत प्यारी दुआ ये, जो जो ये दुआ पढ़ के सोता है तो अगर उसी रात उसको मौत आ जाए तो ईमान पे उसकी मौत होगी। सो ये अल वकील नाम है। अब देखें ये भी आपको बता दिया कि सुबह और शाम हमने सात सात दफ़ा ये हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वअलैहि तवक्कल तू, अल्लाह मैंने तेरे ऊपर तवक्कल किया, और रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसमें भी तवक्कल की बात है, भरोसे की बात है, और बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह ही, इसके अंदर भी तवक्कल की बात है कि हमने अल्लाह को अपना वकील बना लिया। तो ये दुआएं अपने साथ रखनी है, लेकिन सोच समझ के ये देखते हुए कि हम क्या कह रहे हैं, वाकई फिर अल्लाह को वकील बना रहे हैं या सिर्फ मुंह की बात है। अल्लाह ताला इन नामों का सही फहम हमें अता फरमाए, इनका हमारे दिल में यकीन पैदा फरमा दे, इनको याद रखने की तौफीक अता फरमा दे। आज जो टिप आपको मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि आप फिर हमारी इंशाल्लाह आगे ऑड नाइट आ रही है, तो ऑड नाइट में ज़्यादा एहतमाम कीजिए, जागना तो सारी रातों में ही है लेकिन ऑड नाइट्स में खासुल खास अपने एक एक मिनट का ध्यान रखना है। तो जब आज मगरिब हो तो उसके बाद से ज़रा कम बोलें और अपनी ज़ुबान को ज़िक्र में ज़्यादा लगाएं। अब हम ख़वातीन हैं, ज़ाहिर है एकदम से हम इफ्तार करते ही अलग हो के नफल नहीं पढ़ना शुरू कर सकते, कुरान नहीं पढ़ना शुरू कर सकते, क्योंकि हमें घर की भी जिम्मेदारियां हैं, बर्तन उठाने हैं, कोई किचन समेटना है, कोई चाय पानी देनी है सबको, तो इतना वक्त लेकिन हम वेस्ट भी नहीं कर सकते। तो उसमें हमने क्या करना है, कम से कम बात करनी है, सिर्फ ज़रूरत की करें और ज़ुबान को बिजी रखें, जिक्र में बर्तन उठाएं, संभालें, सब करें, लेकिन जिक्र करते ही जाएं साथ साथ। और घर वालों को भी यह बात बता दें, ये ना सोचें कि पता नहीं क्या बात हो गई, इतनी खामोश है। तो चूंकि फालतू बात जितनी हम करेंगे, कभी किसी की बुराई हो जाएगी, कभी किसी को डिस्कस कर लेंगे, कभी कुछ हो जाएगा, तो अगर लैलतुल कदर हुई तो क्या फ़ायदा कि हम उसके अंदर उल्टा गुनाह कमा रहे हैं। आपको पता है जिस चीज़ की कदर ज़्यादा होती ना, ये तो है ही लैलतुल कदर, बड़ी कदर कीमत वाली रात है, जिस चीज़ की कदर जितनी ज़्यादा होती है उसमें इंटेंसिटी गुनाह की भी बढ़ जाती है। वो गुनाह आम दिनों में जितना होता है उससे ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप एक बाहर कोई गलत काम करें और मस्जिद में जाके करें, तो मस्जिद में बढ़ जाएगी ना फिर उसकी। आप कहीं और करें या काबा में जाके करें, तो बहुत फ़र्क है। तो इसी तरह ये रात उतनी कदरों मंजिलत वाली रात हो, उसके अंदर कोई गुनाह करना, ये फिर उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो अगर कोई गुनाह की हम बात नहीं भी करते, कोई किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं भी कर रहे, तो लघवियात, बेकार बातें, इधर की उधर, उधर की इधर, खाम खा की, तो ये भी एक टाइम वेस्टर हो जाता है। तो इस इन रातों में, स्पेशली ऑड नाइट्स पे, हमने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना। कोई लम्हा ना ऐसा जाए जिसमें हम बस भूले हों जिक्र और इंतज़ार कर रहे हों कि आधी रात होगी तो फिर मैं शुरू करूँगी, उस वक्त नहीं शुरू करना। बस मगरिब हो गई, शुरू हो गया टाइम, ठीक है। और आपसे हम हर रात को लैलतुल कद्र ही कहेंगे, क्योंकि देखें जितना हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे ना कि हाँ आज ही लैलतुल कद्र है, उतना ही हम एनर्जेटिक होके काम करेंगे, अदरवाइज फिर जोश ठंडा हो जाता है कुछ दिनों में, कुछ रातों के बाद थक जाते हैं, और फिर ये होता है कि अच्छा चलो छोड़ो, आज छोड़ भी देते हैं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे नहीं करना, हर रात में उतनी शौक के साथ बैठना। अल्लाह ताला हमारा बैठना कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला हमारी इस टूटी फूटी कोशिश को ही कबूल फरमा ले। अल्लाह जो तेरे असमा हम सीख रहे हैं प्यार से मोहब्बत से, अल्लाह इनका यकीन हमारे दिलों में उतार दे कि हम तेरे नामों के साथ ज़िंदगी गुजारें। इतने प्यारे नाम तेरे जो हम अब जाके पहचान रहे हैं, अल्लाह ताला इनके साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आपको जिक्र बताना था, वो भी जिक्र भी बहुत प्यारा जिक्र है, इसलिए कि ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत असमा बिनते उमैस को सिखाया था कि कोई भी परेशानी हो, कर्ब हो, तो उस वक़्त ये जिक्र करें। और बहुत आसान है, अल्लाहु अल्लाहु दो दफ़ा अल्लाह का नाम, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करती। तो जब परेशानी हो तो ये समझ लें, ये जिक्र विर्द बना लें, अल्लाह का नाम लेना कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह ताला हर वक्त में, हर हाल में, खुशी और गम, परेशानी हो या आसानी हो, हर हाल में जिक्र करने वाला हमें रखे और उसकी याद के साथ जीने वाला हमें रखे। अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों और जो भी हमारे मसले हैं उनके लिए हमारा वकील बन जाए, और हम उसके ऊपर वैसा भरोसा कर सकें जैसा भरोसा करने का हक है, और अल्लाह ताला हमारा हामी हो, नासिर हो, और अल्लाह ताला हमारे कामों की, सब कामों को हमने तेरे सुपुर्द किया, अल्लाह तुम्हारे सारे ही कामों को अच्छा कर देना। हम तेरे ऊपर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, और जो तेरे ऊपर भरोसा करे तो उसके भरोसे को कभी ज़ाया नहीं होने देता। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका 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 व नतूबु इलैक। اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.